रहा था, रूप वही रूप नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं विनोद रायना की लिखी कहानी कथा जीवाणु खोज की। पुराने समय से ही ये बात चर्चा का विषय रही है कि सबसे छोटी जीवित चीज आखिर क्या है। प्राचीन समय में लोग छोटे छोटे बीज देखते थे जिनसे पौधे उगाते थे। ये सवाल उनके मन में रहा होगा कि क्या इन बीजों से भी छोटे जीव जंतु होंगे। इस बीच लोगों ने देखा कि अगर वस्तुओं को गोलाईदार कांच से देखा जाए तो वो बड़ी दिखती है। वास्तव में गोलाईदार कांच से वस्तुओं को देखने की शुरुआत 1650 में हुई थी। कांच के टुकड़ों को लेंस का नाम दिया गया। लेंस से चीजें बड़ी दिखती हैं और अगर एक से अधिक लेंस किसी नली में एक खास क्रम में रखे जाएं, तो इस तरह बनने वाले यंत्र को सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। सूक्ष्मदर्शी की मदद से बाद में लोगों ने छोटी छोटी चीजों का अध्ययन शुरू किया, खासकर पिस्सू का। इसलिए शुरू में माइक्रोस्कोप को पिस्सू कांच भी कहा जाता था, लेकिन ये पिस्सू कांच बहुत अच्छा नहीं था। लेंस के भीतर हवा के बुलबुले रहते और सतह भी बहुत साफ व चमकीली नहीं थी। इस वजह से देखी जाने वाली वस्तुएं बहुत साफ और स्पष्ट नहीं दिखती थी। इधर हॉलैंड देश में ल्यूवेन हॉक नामक एक व्यक्ति लेंसों को बेहतर बनाने में जुटा हुआ था। वो ना तो ज्यादा पढ़ा लिखा था और ना ही कोई वैज्ञानिक। उसकी तो लो लंगड़ यानी हार्डवेयर की दुकान थी। उसने ऐसे लेंस बनाए जिनकी सतह चमकदार थी और कांच में हवा के बुलबुले भी नहीं थे। इन लेंसों से चीजें अपने आकार से 200 गुना बड़ी दिखती थी। ल्यूवेन हॉक ने कुल मिलाकर 419 लेंस बनाए। हालांकि एक लेंस को बनाने में बहुत अधिक समय लगता था, पर ल्यूवेन हॉक जीवट आदमी था। वो 90 बरस जिया और अनंत तक काम ही करता रहा। ल्यूवेन हॉक ने एक सूक्ष्मदर्शियों की मदद से चमड़ी, खून, बाल आदि को देखा। सन 1677 में उसने डबरे के पानी की एक बूंद को अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। पानी की बूंद में उसे कई छोटी छोटी रचनाएं दिखाई दी। इनमें से कुछ जीवित थी और 1 सेंटीमीटर के 20वें भाग से भी छोटी थी। जीवित रचनाएं पानी की बूंद में हरकत करती थी और कुछ खाती भी जाती थी। ल्यूवेन हॉक से पहले शायद कोई कल्पना भी नहीं कर पाया था कि इतने छोटे जीव भी हो सकते हैं। इन जीवों को अब अमीबा, पैरामीशियम आदि नामों से जाना जाता है। जैसे जैसे सूक्ष्मदर्शी बेहतर होता गया, वैसे वैसे अधिक बारीक चीजों का अध्ययन करना संभव होता गया। सन 1683 में एक बिंदुनुमा और तिनके जैसी रचनाएं देखी गईं। ल्यूवेन हॉक को शक था कि ये रचनाएं जीवित हैं, लेकिन अपने हर तरह के प्रयास के बावजूद वो इन रचनाओं का गहराई से अध्ययन करने में सफल ना हो सका। अंततः इन रचनाओं को बैक्टीरिया या जीवाणु नाम दिया गया। यूनानी भाषा में बैक्टीरिया का अर्थ होता है छोटे अंडे। हिंदी में हम इन्हें जीवाणु कहते हैं। इन्हीं जीवाणुओं को रोगाणु या जर्म भी कहा जाता है। इस तरह ल्यूवेन हॉक पहला व्यक्ति था जिसने रोगाणुओं को देखा। सन 1830 तक आते आते न केवल अच्छी क्वालिटी के लेंस बनने लगे थे, बल्कि सूक्ष्मदर्शी बनाने के तरीके भी विकसित हुए थे। इन विकसित सूक्ष्मदर्शियों से ही बैक्टीरिया या जीवाणुओं का व्यापक अध्ययन हो पाया। एक जर्मन जीव वैज्ञानिक फेर्डिनांड जूलियस कोहन ने इन जीवाणुओं का सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन किया। उनसे अनन्य जीवाणुओं के अलावा एक कोशीय वनस्पतीय शैवाल या एल्गी का भी अध्ययन किया। एल्गी वास्तव में सबसे छोटी वनस्पति है। 1860 के दशक में इन सभी जीवाणुओं के आकार, रहने के तरीकों, इनके विभाजन आदि का विस्तृत अध्ययन किया गया। अपने इस अध्ययन को उसने 1872 में 3 खंडों वाली एक किताब में प्रकाशित किया। इस किताब का प्रकाशित होना एक तरह से बैक्टीरियोलॉजी जैसे विषय की स्थापना थी। फिर भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस किताब के प्रकाशन से 200 वर्ष पहले ल्यूवेन हॉक ने बैक्टीरिया देख लिए थे। आज मानव जाति के लिए बैक्टीरिया का क्या महत्व है, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन उस समय तो लोगों को इस प्रश्न ने परेशान कर रखा था कि आखिर जीवाणु आते कहाँ से हैं। ये तो पता था कि मानव जैसे बड़े बड़े प्राणी, जानवर, पेड़ पौधे कैसे पैदा होते हैं। बड़े प्राणी बच्चों को जन्म देते हैं, पक्षी अंडे देते हैं जिनमें से चूजे निकलते हैं, पेड़ पौधे बीजों को बोने से बनते हैं। लेकिन छोटी कीटों और कृमियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ऐसा लगता था कि वे अपने आप ही पैदा होते हैं। कई लोगों का तो ये मत था कि ये सड़ी गली चीज़ों से पैदा होते हैं, और ऐसा समझा जाता था कि मृत चीज़ें सड़कर अपने आप अनन्य जीवों में बदल जाती। इस धारणा को सम्भवतः उत्पत्ति के सिद्धांत के नाम से जाना जाता था। इस सिद्धांत का एक उदाहरण सड़े गले गोश्त को दिया जाता था। ऐसा लगता था कि जैसे सड़ते हुए गोश्त पर अपने आप कीड़े उत्पन्न हो रहे हैं। सन 1668 में एक इतालवी जीवशास्त्री फ्रांसिस्को रेडी को एक प्रयोग सूझा। उसने देखा कि एक सड़े हुए गोश्त पर हमेशा मक्खियां मंडराती रहती हैं। उसने सोचा शायद कीड़ों की उत्पत्ति से इनका कोई संबंध हो। उसने गोश्त के कुछ टुकड़े छोटे छोटे बर्तनों में रख दिए। कुछ बर्तनों को उसने बारीक कपड़ों से ढक दिया ताकि उनमें हवा तो जा सके लेकिन मक्खी नहीं, और बाकी बर्तन खुले छोड़ दिए। गोश्त के टुकड़े सड़ने लगे, लेकिन उन्हीं टुकड़ों पर कीड़े दिखाई दिए जिन पर मक्खियां बैठ सकती थी। कपड़े से ढके बर्तनों का गोश्त सड़ा तो, लेकिन उनमें कोई कीड़े नहीं पड़े। रेडी ने इस प्रयोग से ये निष्कर्ष निकाला कि मक्खियां सड़ते हुए गोश्त पर अंडे देती हैं और अंडों से ही कीड़े पन जाते हैं, और कुछ समय बाद यही कीड़े मक्खियों में बदल कर उड़ जाते हैं। सूक्ष्म दर्शी की मदद से गोश्त पर अंडे भी देखे गए। रेडी के इस प्रयोग के कुछ साल बाद ही ल्यूवेन हॉक ने जीवाणुओं के होने का पता लगाया था। सवाल वही था कि जीवाणु कहां से आते हैं। ये तो मांस पर पैदा होने वाले कीड़ों से भी छोटे और सरल रचना के जीव थे। संभवतः उत्पत्ति सिद्धांत किन्हीं जीवाणुओं पर तो लागू नहीं होता। आखिरकार 1748 में एक अंग्रेज जीवशास्त्री जॉन नीडहम ने एक प्रयोग किया। उसने गोश्त का रस लिया और जिसमें अनेक जीवाणु थे। उसने सूप को उबाला ताकि सारे जीवाणु मर जाएं। फिर उसने इस सूप को ऐसे बर्तन में रखा जो चारों तरफ से बंद था। इस तरह यह तय था कि अब इस सूप में बाहर से कोई जीव प्रवेश नहीं कर सकता। अगर सूप में कोई जीव मिलता है तो इसका मतलब ये है कि वो अपने आप उत्पन्न हुआ होगा। कुछ दिन बाद नीडहम ने जब बर्तन खोला तो उसमें अनेकों जीव थे। नीडहम इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जीवाणुओं की उत्पत्ति अपने आप होती है। लेकिन एक अन्य इतालवी जीवशास्त्री लाजारो स्पेलेंजानी को लगा कि शायद नीडहम ने सूप को ठीक से और देर तक उबाला ना हो, इससे संभव है कि कुछ जीवाणु बच गए हों। उसने नीडहम के प्रयोग को दोहराया, सूप को आधे घंटे तक उबाला और फिर एक वैसे ही बर्तन में बंद करके रख दिया। जब कई दिनों के बाद लाजारो ने बर्तन को खोला तो उसमें जीवाणु नहीं थे। इसमें इस प्रयोग से ये बात तो स्पष्ट होती ही है कि वैज्ञानिक तरीके में ठीक ठाक प्रयोग करने का क्या महत्व है। कई लोग अभी संतुष्ट नहीं थे। उनका कहना था कि प्रकृति में तो उबलने जैसी प्रक्रिया होती ही नहीं है। शायद संवता उत्पत्ति के लिए हवा के लिए कुछ रसायन जरूरी हो जो उबलने से नष्ट हो जाते हों। हो सकता है नीडम के प्रयोग में उबालने से सारे रसायन नष्ट ना हो पाए हों और स्पेलन जानी के प्रयोग में ही हो गए हों और इसी कारण से निष्कर्षों में फर्क आ रहा हो। और इन असंतुष्ट लोगों ने ये भी कहा कि आखिरकार उबले हुए सूप को दोबारा हवा में रखने पर थोड़ी ही देर में उसमें जीवाणु पैदा हो जाते हैं, वे कहाँ से आए, शायद ठंडी हवा का वातावरण मिलने पर अपने आप सूप में उत्पन्न हो गए। लगभग 100 साल तक जीव शास्त्रियों के बीच इस बात पर विवाद होता रहा। 1858 में एक फ्रांसीसी रसायन शास्त्री लुई पाश्चर ने एक समस्या को सुलझाया। इसे विज्ञान के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखा जाता है। पाश्चर को शक था कि हवा में भी जीवाणु रहते हैं। उसने अपने शक को जांचने के लिए एक प्रयोग किया। उसने थोड़ी सी रुई ली, उसे पानी में डालकर अच्छी तरह उबाल लिया ताकि उसमें छिपे सारे जीवाणु मर जाएं। और फिर रुई निकालकर हवा में रखी और थोड़ी देर बाद वापस उसी पानी में डाल दी। पानी में फिर से जीवाणु दिखाई देने लगे। याद रहे कि ये सारा काम सूक्ष्मदर्शी के सहारे से हो रहा था। इस प्रयोग से ऐसा लगा कि हवा में भी जीवाणु होते हैं। पाश्चर ने एक और प्रयोग किया। उसने एक ऐसा तरीका सोचा जिसमें किसी बर्तन में भरे सूप में ठंडी हवा लगातार जाती रहे लेकिन हवा के जीवाणु ना पहुंचे। उसे इस बात का एहसास था कि हवा में जीवाणु धूल के कणों पर चिपके रहते हैं। उसने एक खास तरह का फ्लास्क बनाया। इस फ्लास्क तथा नली की रचना तुम चित्र में देख सकते हो। पाश्चर ने इस फ्लास्क को सूप से आधा भर लिया और फिर सूप को उबाला। मुड़ी हुई नली से भाप को देर तक निकलने दिया। इस तरह सूप व नली में सभी जीवाणु मर गए। फिर उसने सूप को ठंडा होने दिया। फ्लास्क की मुड़ी हुई नली को खुला ही रखा ताकि हवा अंदर जा सके। हवा तो सूप तक पहुंच सकती थी लेकिन धूल के कण मुड़े हुए हिस्से से ऊपर उठकर फ्लास्क के भीतर प्रवेश नहीं कर पाते थे। वे वही मुड़े हुए हिस्से में रह जाते। पाश्चर ने महीनों तक फ्लास्क को ऐसे ही रखे रहने दिया लेकिन सूप में कोई जीवाणु पैदा नहीं हुए। लेकिन फ्लास्क की नली को तोड़ते ही सूप में जीवाणु नजर आने लगे। 1864 में पाश्चर ने अपने निष्कर्षों का सार्वजनिक रूप से ऐलान किया। कई अन्य व्यक्तियों ने प्रयोग को दोहराया और यही निष्कर्ष निकाला। तब ये बात साफ हो गई कि संवत उत्पत्ति जैसी कोई चीज नहीं होती है, ना तो जीवाणुओं की और ना ही पहली बरसात में मेंढकों और मछलियों के आकाश से गिरने की। पाश्चर के इसी अध्ययन से रोगों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। अब रोग तो ऐसी चीज है जिसके बारे में जानने के लिए सभी उत्सुक रहते हैं क्योंकि कभी ना कभी सभी इसकी गिरफ्त में आ ही जाते हैं। अगर एक व्यक्ति को बुखार आए तो हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति को भी बुखार हो जाए, वो बीमार हो जाए या शायद पूरा परिवार, मोहल्ला, गांव, शहर भी बीमार हो सकता है। सन 1300 में यूरोप, अफ्रीका, एशिया में एक ऐसी महामारी फैली जिससे करोड़ों लोगों की मृत्यु हो गई। उस समय किसी को ये मालूम नहीं था कि रोग कैसे होते हैं या कैसे फैलते हैं। कुछ लोग सोचते थे कि ये भूत प्रेत का काम है, तो कुछ सोचते थे कि बुरे कामों की सजा है। इस तरह किसी को भी इस बात का ज्ञान नहीं था कि बीमारियों को रोका भी जा सकता है। लोग महामारी के डर से हमेशा आतंकित रहते थे। ये देखने में आया कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे कि चेचक, यदि किसी व्यक्ति को एक दफा हो जाए तो दोबारा नहीं होती। ऐसा लगता था जैसे उस व्यक्ति ने उस बीमारी से लड़कर हमेशा के लिए उससे मुक्ति पा ली हो। सन 1770 में एडवर्ड जेनर नामक एक अंग्रेज डॉक्टर ने गायों को होने वाली बीमारी काऊ पॉक्स में दिलचस्पी ली। ये बीमारी कुछ कुछ चेचक जैसी दिखती थी। गायों से ये मनुष्यों को भी होती थी, लेकिन चेचक की तरह नहीं। इसमें तो एक आध छाला ही निकलता था बस। जहाँ जेनर काम कर रहा था, वहाँ के लोग काऊ पॉक्स को अच्छा मानते थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि जिसे एक दफा काऊ पॉक्स हो जाए, उसे दोबारा चेचक या काऊ पॉक्स नहीं होता था। लगभग 20 वर्षों तक अध्ययन करने के बाद जेनर ने एक खतरनाक प्रयोग करने की ठानी। 14 मई 1996 को उसने काऊ पॉक्स से पीड़ित एक दूध बेचने वाली महिला के शरीर पर उभरे छाले में एक सुई घुसाई और इसी सुई से एक स्वस्थ बच्चे की चमड़ी को खरोच दिया। इस बच्चे को कभी काऊ पॉक्स या चेचक नहीं हुआ था। बच्चे को काऊ पॉक्स हुआ और खरोच की जगह पर छाला उभर आया। जेनर 2 महीने तक इंतजार करता रहा। बच्चे को तो अब काऊ पॉक्स नहीं होने वाला था, लेकिन क्या बच्चा चेचक से भी मुक्त हो गया था? जेनर ने फिर एक जोखिम उठाया और दोबारा एक सुई से बच्चे की चमड़ी को खरोचा। इस बार सुई चेचक के छाले में डाली गई थी। बच्चे को चेचक नहीं हुआ। 2 वर्ष बाद जेनर ने फिर यही प्रयोग एक बच्ची पर किया। उसने पाया कि काऊ पॉक्स का हल्का रोग लगने के बाद ये लोगों को चेचक से हमेशा के लिए मुक्ति दिलवा सकता है। चिकित्सा विज्ञान में काऊ पॉक्स को वेवसीनिया कहा जाता है, जिसका लैटिन भाषा में अर्थ है गाय। इसलिए जेनर के इस तरीके को वैक्सीनेशन नाम दिया गया, जिसे हम लोग टीका लगवाना कहते हैं। तो हर टीके में यही होता है कि उस रोग के कुछ जीवाणु टीके के माध्यम से बच्चे में पहुंचाए जाते हैं। जब रोग होता है तो शरीर उससे लड़ता है और शरीर में ऐसी प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है कि भविष्य में कभी वो रोग हो ही नहीं। हालांकि इस प्रकार से सभी रोगों को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि चेचक की तरह बाकी रोगों का काऊ पॉक्स जैसा कोई भाई भतीजा नहीं मिला। लेकिन इस बात से ये जरूर सोचा गया कि शायद एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोग फैलने पर रोक लगाना संभव हो। हंगरी के एक डॉक्टर सैमुअल वाइज एक प्रसूति गृह में काम करते थे। प्रसव के दौरान कई महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी, इससे डॉक्टर बहुत परेशान थे। सैमुअल वाइज ने एक नियम बनाया कि सभी डॉक्टर मरीज के पास जाने से पहले कुछ खास रसायन से हाथ धोएंगे। ऐसा करने पर अस्पताल में मृत्यु दर एकदम कम हो गई, लेकिन बाकी डॉक्टरों को हाथ धोने का ये काम झंझट ही लगता था। उन्होंने सैमुअल वाइस का तबादला करवा दिया और वापस अपने रास्ते पर आ गए। अस्पताल में मृत्यु दर फिर से बढ़ गई। आखिरकार इन सब बातों की सफाई फिर से पॉस्चर ने ही की। फ्रांस में शराब बनाने का एक बहुत बड़ा कारखाना है। एक बार वहां पर रखी शराब खट्टी होने लगी। लोग घबराए, क्योंकि करोड़ों रुपए की शराब खराब होने का डर था। पाशर ने देखा शराब में कुछ अतिरिक्त जीवाणु मौजूद है जो नहीं होने चाहिए। ये जीवाणु शराब में अमल पैदा कर रहे। पाशर ने कहा कि शराब को थोड़ा गर्म कर दिया जाए ताकि ये जीवाणु मर जाए। चकित शराब उत्पादकों ने ऐसा ही किया और शराब बच गई। पाशर के काम को एक जर्मन डॉक्टर रोबर्ट कॉक ने आगे बढ़ाया। आहिस्ता आहिस्ता ये बात स्थापित हो गई कि इन्हीं जीवाणुओं में से कुछ, जिन्हें जर्म या कीटाणु कहते हैं, बीमारी की जड़ है। आगे का इतिहास फिर कभी। हाँ, एक बात याद रहे, सभी जीवाणु बीमारी नहीं फैलाते। बहुत सारे हमारी मदद भी करते हैं। मिट्टी में रहकर वे अन्य कई प्रकार से, और ये बात भी सही है कि अधिकांश जीवाणु गर्म करने से मर जाते। सोचो तो, दूध को गर्म करके क्यों रखते हैं? और गर्म ना करने पर दूध खराब क्यों हो जाता है? ऑपरेशन के समय में भी डॉक्टर अपने औजारों को अच्छी तरह से क्यों उबालते हैं? पॉस्चर ने ये विधि भी सुझाई कि किसी भी चीज को कीटाणु रहित करने के लिए लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर काफी देर तक गर्म करना चाहिए। इस विधि को पॉस्चराइजेशन कहा जाता है। इस तरह से जीवाणुओं के असर का पता करने के लिए वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में विभिन्न प्रयोग करते हैं। इनमें से कई प्रयोग जोखिम भरे भी होते हैं। अभी आपने सुनी विनोद रायना की लिखी कहानी कथा जीवाणु खोज की। गाथा में इस कहानी को आपके लिए प्रस्तुत किया था निधि मिश्रा ने।